الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ مدانی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین آئیے سب سے پہلے تو ہم شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدانی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل اس سیگمنٹ میں قرآن سے روحانی علاج میں قرآن پاک کی کوئی ایک ایسی آیت بتائی جاتی ہے، قرآنی ایک وظیفہ بتایا جاتا ہے جو مختلف مسائل کے حل کے لیے، مختلف بیماریوں سے حفاظت کے لیے الحمدللہ عزوجل وہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتانے کی نیت کی ہے اور جو آپ وظیفہ آج انشاءاللہ الکریم آپ کو بتانا ہے وہ ہے آنکھوں کے امراض سے محفوظ رہنے کا ایک وظیفہ۔ بعض اوقات آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، آنکھوں کے امراض، کافی سارے امراض ہیں، آنکھوں کے امراض لگ جاتے ہیں، پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح آنکھوں میں بعض اوقات درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کسی کو سفید موتیا یا کالے موتیا کی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے آنکھوں کی کسی بھی حوالے سے اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنی ہے، تین بار اول اور آخر درود پاک کے ساتھ تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اپنی انگلیوں پر دم کر لیں۔ اب جیسے یہ شہادت والی انگلی ہے نا، ان شہادت والی انگلیوں پر آپ دم کر لیں، تین بار بسم اللہ شریف پڑھیں، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یہ شہادت والی انگلیوں پر دم کر کے یہ آپ اپنی آنکھوں پر لگائیے، اس انداز سے آنکھوں پر لگائیے اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آنکھوں کی جو بینائی اگر کسی کی کمزور ہو چکی ہوگی تو وہ بھی دور ہوگی، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سفید اور کالے موتیے سے بھی الحمدللہ عزوجل آنکھوں کی حفاظت رہے گی، اور یہ عمل آپ نے عمر بھر مسلسل جاری رکھنا ہے۔ جو آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہیں وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، اور جن کی آنکھیں سلامت ہیں، کوئی ایسی بظاہر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ایسا مرض نہیں ہے آنکھوں کا، وہ بھی آپ چاہیں تو حفاظت کی نیت سے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی نیت سے اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ عزوجل اس وظیفے کی برکت سے، اس روحانی علاج کی برکت سے آنکھوں کی حفاظت رہے گی۔ یہ تو ہوا پڑھنے کے حوالے سے ایک وظیفہ۔ چلیں آج ایک اور عمل میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین، یہ عمل ایسا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ عمل شامل کر لیں اور الحمدللہ عزوجل آنکھوں کے جو امراض ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے، آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہو جائے گی۔ جن کی آنکھیں دکھتی ہیں نا، آنکھیں بعض اوقات خشک ہو جاتی ہیں، دکھنا شروع ہو جاتی ہیں، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنکھیں لال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بہترین عمل میں عرض کرنے لگا ہوں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عطا فرمایا ہوا ایک بہترین عمل آج میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین نوٹ بھی کر لیں اور اس کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید یہ روحانی بیماریوں سے بھی شفا ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، شفائیں حاصل ہوتی ہیں۔ جہاں پڑھنے کے فوائد و برکات ہیں، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کو دیکھتا ہے نا، پڑھنے کے تو ہم نے فضائل سنے ہیں ماشاءاللہ، اب دیکھنے کے میں فضائل آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، دیکھنے سے کیا کیا آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کو دیکھتا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کی بینائی زیادہ ہو جاتی ہے، آنکھوں کی روشنی اس کی تیز ہو جاتی ہے، اچھا اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھتی، اور ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں کبھی خشک نہیں ہوتی، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی، آنکھوں کے امراض دور ہو جائیں گے، آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی اور اسی طرح آنکھیں کبھی خشک نہیں ہوں گی۔ اللہ توفیق دے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ہم ویسے ہی اٹھا کر کیفیت ہم برتاری ہو اور زیارت کر لیں تو یہ ضرور عمل کیجئے گا۔ अल्लाह की रहमत से घर में बरकतें रहमतें नाजिल होंगी इंशाल्लाह। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है आपके कॉल्स सिलसिले में शामिल करने का। देखते हैं कि नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। जी कॉल्स चलाइए।
मेरा नाम ओन मोहम्मद अस्तारी है। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, मैं इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ। मेरी वालिदा का नाम फरहाना है।
इंशाअल्लाह करीम अभी आपका इस्तिखारा करते हैं। जी नेक्स्ट कॉल।
मेरी वालदा काफी अरसे से बीमार है और इनका दिल भी बहुत ज्यादा डरता है। मेरी वालदा का नाम अजरा बीबी है और इनकी वालदा का नाम हमीदा बीबी है। प्लीज मेहरबानी करके इस्तिखारा कर दीजिए
इंशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल।
मेरे अबू घर से लापता है, उनका नाम है मजर अली, वालदा का नाम है फजल जान। उनके लिए इस्तिखारा भी फरमा दे और खसूसी दुआ भी फरमा दे।
मजहर नाम बताया ना वालिद साहिब का आपने, लापता हो चुके हैं। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, खैर के साथ आफियत के साथ आपसे मिला दे। अल्लाह करे जल्द वापस घर आ जाएं। अभी इस्तिखारा भी करते हैं और वजीफा भी इंशाअल्लाह करीम बताते हैं। जी नेक्स्ट कॉल।
आमिर हुसैन, वालदा का नाम अस्मा खातून, जोधपुर के रिश्ते का मसला है।
सही। जी नेक्स्ट कॉल।
मेरा नाम मोहम्मद अमजदा जी, वालदा का नाम सरदारा बेबी है, मुझे मोरों का मसला है, कुरानी इलाज बता दे।
सही है। मज़ीद भी इंशाअल्लाह करीम शामिल करेंगे, मैसेजेस भी मैं शामिल कर लेता हूँ, फिर आपको कुछ दिखाना भी है नाज़रीन, फिर आपके इस्तिखारे भी माशाअल्लाह किए जाएंगे। इस्तिखारों के हवाले से एक मैसेज है मोहम्मद बशीर भाई, और इन्होंने कहा है कि बशीर शाहिद नाम आपने कहा है और वालदा का नाम आपने बीबी लिखा है, कि अक्सर घर वाले बीमार रहते हैं, कारोबार भी नहीं चलता। और ये हमारे नवाज़ अत्तारी भाई हैं, रहीम यार खान से मैसेज किया है। जी इंशाअल्लाह करीम नोट कर लिया गया आपका मसला भी, और अभी इस्तिखारा भी आपका करते हैं। और जिन नाज़रीन ने हमें कॉल्स की हैं इनका भी इंशाअल्लाह करीम इस्तिखारा किया जाएगा। नाज़रीन कुरान पाक की एक फजीलत, एक आज़मत मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आपके सामने बयान भी की थी कि कुरान पाक को पढ़ने की क्या फजीलत है और देखने की क्या फजीलत है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कुछ मालूमाती के लिए बेहतरीन पैकेज है मुफ्ती कासिम साहिब का, जिसमें कुरान पाक की आज़मत बयान की गई है। आइए जब तक आपको वो दिखाते हैं और इस दौरान आपके इस्तिखारे किए जाएंगे, इस्तिखारों करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह करीम, इसके जवाबात भी बताएंगे, शामिल रहिएगा सिलसिले में। आइए देखते हैं।
कुरान मजीद की निस्बत की अजमतें आप सब जानते हैं कि कुरान मजीद जिस रात में नाजिल हुआ अल्लाह ताला ने उसे हजार महीनों से अफजल बना दिया। तो इससे पता चला कि कुरान मजीद के साथ जिस शय की निस्बत होती है उसके मकाम मरतबे और अजमत में इजाफा हो जाता है। इसलिए कुरान पाक तो वो अल्फाज हैं कि जो हम पढ़ते हैं, जो अल्फाज है जो लिखे होते हैं, लेकिन जिन सफहात पे वो लिखे होते हैं वो सफहात जिन दो जिल्दों के दरमियान, दो गत्तों के दरमियान होते हैं, बेवजू उन्हें भी छूना हराम हो जाता है, क्योंकि उनमें कुरान है। गत्तों पे तो कुरान नहीं लिखा होता, जिल्द पे तो कुरान नहीं लिखा होता, कुरान तो अंदर सफहात पे, लेकिन कुरान से निस्बत बड़े कुर्ब की है। तो कुर्ब की निस्बत की वजह से शरीयत ने हुक्म ये दे दिया कि उन गत्तों को भी बेवजू छूना हराम है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, ना छुए कुरान को मगर बहुत पाक लोग। तो कुरान मजीद वो बरकतों वाली, वो अजमतों वाली किताब है कि जहां पर ये अपने अनवार के साथ उतर जाती है उसे पाक कर देती है। जिस दिल के अंदर उतर जाए वो दिल पाक हो जाता है। जिस किताब में लिखी गई वो किताब भी बड़ी पाकीजगी वाली है। मस्जिदों में पढ़ी जाती है तो मस्जिदें भी पाक होती हैं, पाकी की हालत में उसे पढ़ने का हुक्म है। तो जब जाहिर की पाकियां ये हैं तो जिस दिल के अंदर कुरान उतर जाए उस दिल का आलम क्या होगा। एक हदीस मुबारक है, फरमाया कि जिस चमड़े में कुरान होगा उसे आग नहीं जला सकती। यह हदीस मुबारक है कि जिस चमड़े में कुरान हो उसे आग नहीं जला सकती। तो अब इसके ऊपर सवाल होता है कि भी ये कैसे हो सकता है, हम अगर किसी चमड़े में कुरान पाक रखें और आग में अगर माद अल्लाह कोई डाले तो आग तो लग जाएगी उसे, तो इस हदीस का मतलब क्या है। तो उलमा ने फरमाया कि इसके दो मतलब है। एक तो ये है कि ये قرآن پاک کا معجزہ تھا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، کہ سرکار کے زمانے میں اگر کسی چمڑے میں قرآن ہوتا اور اسے آگ میں بھی رکھ دیا جاتا تو آگ اسے جلا نہ سکتی، تو یہ اس زمانے کے ساتھ خاص تھا۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو اسی زمانے کے ساتھ خاص ہیں، بعد میں وہ نہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چمڑے میں قرآن ہو، مراد اس سے دل ہے کہ جس دل میں اور جس بدن میں قرآن ہو اسے جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی، اسے جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی، جس دل میں اور جس بدن میں قرآن۔ تو یہ فضیلت ہے اصل میں حافظ قرآن کے بارے میں، کہ حافظ قرآن کے دل میں قرآن ہوتا ہے تو اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔
جی مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک سے نسبت کی عظمتیں الحمدللہ سوجل ہم نے سنی کہ جس دل میں قرآن ہوتا ہے تو جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی۔ قرآن پاک کی تلاوت کو ہم اپنا معمول بنائیں، بہت الحمدللہ سوجل قرآن پاک کی برکتیں ہیں، تلاوت کی برکتیں ہیں، گھر میں رکھنے کی برکتیں ہیں، پڑھنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، الحمدللہ سوجل برکتیں ہی برکتیں۔ میسیجز بھی ہیں ناظرین آپ کے، اور الحمدللہ سوجل استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، میں ناظرین کو جوابات بھی استخاروں کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے سب سے پہلے نور محمد بھائی تھے کہ نور محمد بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ نے کہا تھا کہ طبیعت میں بہت زیادہ چڑچڑا پن رہتا ہے، آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں، نظر وغیرہ بھی آپ اتروائیں۔ اور ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں یا آپ کے گھر والے پڑھ کر آپ پر دم کر دیں، سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ پڑھ کر دم کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم نظر اتر جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ والدہ کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے، دل میں ان کے ڈر خوف بہت زیادہ ہے، دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا اور استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے اور ڈر خوف یہ ان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے اور ان کے دل سے ڈر خوف یہ ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے دیکھیں، پہلے تو بیماری کا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر آپ کی والدہ خود اپنے اوپر دم کریں، اسی طرح روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظ یہ پڑھ لیا کریں، ڈر خوف جاتا رہے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے والد صاحب کے حوالے سے کہا تھا، مظہر نام بتایا تھا کہ گھر سے لاپتہ ہو چکے ہیں، دیکھیں آپ کے والد صاحب محمد مظہر صاحب کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ الکریم جلد واپس آ جائیں گے۔ اب ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر کوئی جیسے گھر سے لاپتہ ہو جائے، کوئی گم ہو جائے اور پتہ نہیں چل پا رہا ہو کہ وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، تو ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے عطا فرمایا، کمال کی اس کی برکتیں ہیں، ایک ہفتے کے اندر اندر وہ شخص واپس آ جائے گا یا پھر اس کی اطلاع مل جائے گی۔ اچھا، عمل یہ کرنا ہے، نماز عشاء کے بعد، صحیح عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھیں گے سورہ والضحیٰ، قرآن پاک کے 30 پارے میں، یہ پڑھنے کے بعد جو گھر ہے نا، گھر کے جو چار کونے ہوتے ہیں، ان چاروں کونوں میں سے دو کونوں میں اذان دینی ہے اور دو کونوں میں تکبیر کہنی ہے، اقامت کہنی ہے، پہلے سورہ والضحیٰ پڑھیں گے۔ اچھا، سورہ والضحیٰ پڑھنے کے بعد اب دو کونوں میں اذان دیں گے اور دو کونوں میں تکبیر پڑھیں گے، اقامت کہیں گے۔ اور اب جیسے آپ کے والد صاحب لاپتہ ہو چکے، آپ والد صاحب کی واپسی کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم اس وظیفے کی برکت اور تاثیر یہ ہے کہ گمشدہ شخص ایک ہفتے کے اندر اندر واپس آ جائے گا یا پھر اس کی اطلاع مل جائے گی۔ یہ تو ہوا وظیفہ، اور میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں کہ آپ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے اس کے خاص تعویذات ضرور حاصل کیجئے گا، گمشدہ شخص کے، گمشدہ شے کے ملنے کے الحمدللہ عزوجل روحانی علاج کے بستوں پر تعویذات بھی دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، عامر حسین نام بتایا تھا کہ جاب میں رکاوٹیں ہیں، رشتہ بھی نہیں ہو پا رہا، تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، قدرتی طور پر رکاوٹیں ہیں، اللہ کا شکر ہے کوئی بندش، کوئی جادو وغیرہ فی الوقت آپ کے ساتھ نہیں ہے، دیکھیں جاب مل جائے، اس کے لیے نماز جمعہ کے بعد آپ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ لیں، تو الحمدللہ عزوجل رزق میں برکت بھی رہے گی، جاب بھی لگ جائے گی۔ اور رشتے کے حوالے سے دیکھیں، نماز فجر کے بعد آپ 312 مرتبہ یا ذوالجلالی والاکرام یہ پڑھا کریں۔ اس کے بعد ہمارے امجد بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ مہروں کا مسئلہ ہے، तो बाद औकात मोहरों में गैप आ जाता है, रीढ़ की हड्डी में मसला हो जाता है, कमर की तकलीफ़ हो जाती है, मोहरों के मसाइल आ जाते हैं, उठना बैठना चलना फिरना बड़ी आसमाइश को इसमें कैफियत हो जाती है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। तो इसके लिए देखें अमजद भाई, आप और हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन जो इस तरह की तकलीफ़ में इस वर्ष में मुब्तला हैं, उठते बैठते चलते फिरते या गनीयो ये कसरत के साथ पढ़ा करें, अल्लाह की रहमत से शिफा हासिल होगी। आइए नाज़रीन शामिल करते हैं आपके मैसेजेस, और जिन नाज़रीन ने मैसेजेस किए थे उनके मैसेजेस में शामिल करने लगा हूँ, इनके भी जवाब नोट कीजिएगा। हमारे बशीर भाई थे, बशीर शाहिद, आपने कहा था कि अक्सर घर वाले बीमार रहते हैं, कारोबार भी नहीं चल रहा, तो देखिए आपका इस्तखारा किया गया, आपके साथ आजमाइश का भी इशारा आ रहा है और बीमारी का भी इशारा आ रहा है, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। अच्छा, अब घर वाले जो बीमार है ना, तो इसके लिए एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। देखें ये 7 दिन का अमल है, 7 दिन यानी 1 हफ्ते मुसलसल जारी रखना है, वो ये कि या रज़्ज़ाकू या रहमानू या रहीमू या सलामू, 7 डेज़ 7 दिन तक पूरा 1 हफ़्ता ये वजीफ़ा पढ़ना है 112 मरतबा, रोज़ाना की बुनियाद पर 112 मरतबा अल्लाह पाक के ये सिफ़ाती नाम आप पढ़ें, या रज़्ज़ाकू या रहमानू या रहीमू या सलामू। इसका फ़ायदा ये होगा कि घर से गुरबत दूर हो जाएगी, घर से नादारी दूर हो जाएगी, घर के जो अफराद बीमार हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल सेहतियाब हो जाएंगे, घर की बीमारियां परेशानियां अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल दूर हो जाएंगी। ये एक और मैसेज था, मेरा नाम आलिया फातमा है और वालदा का नाम इम्तियाज़ बीबी है, मेरे पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, 4-5 साल से मसला है और हर साल नज़र पहले से कम हो जाती है, तो देखिए इस्तखारा किया गया, बीमारी का ही इशारा आ रहा है, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। पट्ठों में अगर किसी के दर्द हो ना, ये उमूमन जैसे ठंड में सर्दियों में बाद औकात आज़ा ये अकड़ जाते हैं, जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है, अच्छा पट्ठे बाद औकात अकड़ जाते हैं, गर्दन किसी के आपने देखा होगा कि ठहर जाती है, अब सीधी करने में बड़ी आजमाइश होती है, सोकर उठते हैं तो किसी की गर्दन में दर्द है, किसी के कंधों में, किसी के पट्ठों में दर्द है, तो अल्लाह ना करे अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी के साथ हो। और जिन्होंने मैसेज किया है इनके लिए भी और हमारे तमाम ही मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए वजीफा है कि दर्द के मकाम पर आप अपना सीधा हाथ रखें। अब जैसे पट्ठों में दर्द है, कंधों में दर्द है, दर्द के मकाम पर सीधा हाथ रखा, 3 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और 7 मरतबा आप ये दुआ पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्री मा अजीदु व उहादिरु, 7 टाइम 7 मरतबा ये दुआ पढ़ लें, अल्लाह की रहमत से ये जो पट्ठों में दर्द है, गर्दन बाज़ों का ठहर जाती है, जिस्मानी आज़ा में दर्द होना शुरू हो जाता है, जो खिंचाव महसूस होने लगता है, तो सब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल ये आपका मसला हल हो जाएगा, तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, ता हुसूल शिफा इस वजीफे पर अमल कीजिएगा। ये एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने मैसेज किया था, बिलाल भाई हैं, इस्तखारा करवाना है, वालदा का नाम अफीरा है, रिश्ते में रुकावट है। देखिए आपका इस्तखारा किया गया, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर का इशारा है, कोई रिश्तों के हवाले से कोई बंदिश वगैरह कोई असरात वगैरह कोई इस तरह का मामला नहीं है, कुदरती तौर पर रुकावटें हैं। आपने नमाज फजर के बाद 60 मरतबा सूरह वत्तीन व ज़ैतून ये पढ़ना है। अच्छा, ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि सईद नाम है, वालदा का नाम है हूर बानो, इस्तखारा करना है कि घुटनों में दर्द रहता है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है। देखिए आपका भी इस्तखारा किया गया, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर का इशारा है, कोई अमलियात असरात जादू बंदिश वगैरह नहीं है, बीमारी का इशारा है। बाज़ों का जिस्मानी भी देखें कुछ तकाजे होते हैं, एक उम्र का भी एक हिस्सा होता है, इतनी मिसाल के तौर पर किसी की 90 साल उम्र है, किसी की 80 साल उम्र है, अब ये उम्र का ऐसा हिस्सा होता है कि इसमें आज़ा जवाब दे जाते हैं, जिस्म में दर्द नकाहत आ जाती है, कमजोरी आ जाती है और कभी घुटनों में दर्द रहता है, ये जिस्मानी तकाजे हैं, सही है, तो ये उमूमन इस उम्र में आके हो जाता है। बहरहाल हिम्मत रखें, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, सही, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। घुटनों में अगर आपके दर्द रहता है तो आपके लिए भी और हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन और बड़ी उम्र के इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों के लिए, एक मरतबा या मुगनियो आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हाथों पे दम करें, दम करके आप अपने घुटनों पर फेर लें, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से ये घुटनों का दर्द जाता रहेगा। तो और एक तो ये वजीफ़ा हुआ, दूसरा एक वजीफ़ा ये भी है कि उठते बैठते चलते फिरते कसरत के साथ या गनीयु ये भी पढ़ते रहा करें, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों में बाज़ों का दर्द हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाता है, तो ये तमाम दर्द से इंशाअल्लाहुल करीम आप महफूज हो जाएंगे। आइए नाज़रीन शामिल करते हैं मज़ीद आपके कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या मालूम कर रहे हैं। जी कॉल्स चलाइएगा।
सर मेरी वालदा का नाम सगीना बीबी है, हफीजा मेरा नाम है। सर हम काम शुरू कर रहे हैं, कपड़े का तुम्हारे लिए ये मुनासिब होगा या नहीं?
कपड़े का काम शुरू करना चाह रहे हैं जी, अभी इस्तखारा करके बताते हैं आपको। जी नेक्स्ट कॉल।
मसला हजरत ये है कि घर में बहुत बेबरकती थी और लड़ाई झगड़े
گھر میں بے برکتی اور لڑائی جھگڑے کا معاملہ، اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، جی اگلی کال دیجیے گا۔
سر میرا نام عادل ہے، والدہ کا نام رضوانہ بی۔ سر میرے آدھے سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ابھی ہوتا ہے، کائنڈلی اس کا استفادہ کر کے بتا دیں، یہ روحانی مسئلہ ہے۔
صحیح، جی مزید کال دیجیے۔
بھتیجا مریض ہے، وہ کچھ ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو استخارہ کرنا ہے ذوالفقار احمد، ان کی والدہ کا نام مریضہ دے گا۔
صحیح، ابھی استخارہ کر کے بتاتے ہیں، ذوالفقار نام بتایا بھتیجے کا۔ جی نیکسٹ کال۔
ہاں میرا نام غلام مصطفیٰ ہے، والدہ کا نام صاحبزادی، ان کا گھر کے بارے میں کر رہے ہیں، کوئی برکت نہیں
گھر میں، برکت نہیں، اللہ پاک آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرمائیں۔ ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، میسیجز بھی کافی سارے ہیں۔ ناظرین جو روحانی علاج آپ کو بتائے جاتے ہیں، جو وظائف الحمدللہ سوجل آپ کو بتائے جاتے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کریں۔ وظیفہ تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے، لیکن باقاعدہ اس کا ایک روحانی علاج کا پراپر ایک طریقہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ سوجل آپ کی اپنی دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین اسلام کی خدمات پیش کر رہی ہے، اور جہاں تبلیغی کام کر رہی ہے، دینی کام کر رہی ہے، اچھا اسی طرح فلاحی کام بھی آپ کی اپنی دعوت اسلامی کر رہی ہے، وہیں دکھیاری امت کی غمخواری بھی کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت شعبہ روحانی علاج دنیا بھر میں الحمدللہ سوجل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کر رہا ہے۔ دنیا کے کم و بیش 35 ممالک میں الحمدللہ سوجل روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، لاکھوں لاکھ لوگ الحمدللہ سوجل تعویذات حاصل کرتے ہیں، مسائل ان کے حل ہوتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ آئیے کچھ مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں، جہاں تعویذات عطاریہ لوگ آتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں، روحانی علاج کرواتے ہیں، پھر ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں، کیا ان کے تاثرات ہوتے ہیں، آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ جی چلائیے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں الحمدللہ عزوجل ملیر کھوگرا پار گلستان مدینہ مسجد۔ اس گلستان مدینہ مسجد میں الحمدللہ عزوجل شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال۔ اس روحانی علاج کے اسٹال پر پلیٹوں کے ذریعے علاج ہوتا ہے الحمدللہ عزوجل، تعویذات کے ذریعے علاج ہوتا ہے الحمدللہ عزوجل، وظائف دیے جاتے ہیں، روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ تو یہ فوائد اور برکتیں کس طرح حاصل ہوتی ہیں، چل کر لیتے ہیں ان سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟
تابش اتاری۔
شفیع حیدر۔
منصور احمد اتاری۔
یہاں گلستان مدینہ مسجد میں آنا ہوا آپ کا روحانی علاج کے اسٹال پر، کس سلسلے میں آئے تھے؟
میں والد صاحب کی بیماری کے لیے آیا تھا، والد صاحب کو شوگر بھی تھی، بلڈ پریشر بھی تھا، ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا ہے کئی بار،
کینسر کے علاج میں۔ میرے سالے ہیں محمد تسلیم، انہیں کینسر بتایا تھا۔
روحانی علاج کے ذریعے آپ کو کیا کیا برکتیں حاصل ہوئی یہاں سے؟
ماشاءاللہ تعویذات عطاریہ کی برکت سے شوگر بھی کنٹرول ہو گئی ہے، اور کافی حد تک بیماری سے بھی نجات حاصل ہو گئی ہے۔
ابھی طبیعت کیسی ہے والی صاحب؟
اب بالکل صحیح ہیں، اور کام کاج بھی کر لیتے ہیں۔
ابھی 8 دن ہم نے یہ پلیٹیں پلائی ہیں، تو بالکل چینج آ رہی ہیں، اب کینسر میں نہیں آ رہی ہیں ان کی رپورٹیں۔
جب بھی بیمار ہوتے تو تعویذات عطاریہ سے جو تعویذ لیتے تو اس سے اللہ کا شکر ہے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بڑی بہار ہے، میرا جو ہے نا پورا جسم خارج زدہ تھا، جہاں پہ بھی میں کھجاتا وہاں سے خون نکلتا، اصل میں کیمیکل کا کام کرتا ہوں، اس سے جو ہے وہ اور بڑھتا تھا۔ تعویذات عطاریہ کی برکت سے، وظیفوں کی برکت سے صحیح ہوتا گیا، اور ابھی جو ہے یہ مطلب ایک تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ڈاکٹر مجھے کہتے تھے کہ یہ کام آپ چھوڑ دو ورنہ آپ کو جلد کا کینسر ہو سکتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ صحیح ہو گیا، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے، نزلہ کھانسی بخار یا گھر میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، تو تعویذ لیتے تو دوسرے دن یا بعض اوقات تو تعویذ کو جیب میں رکھتے ساتھ ہی اس کا اثر ہم پر ہو جاتا ہے۔
ان کے والد صاحب کو شوگر اور بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا، الحمدللہ کنٹرول ہوا ہے کافی حد تک کہ تعویذات کی برکت سے۔ بلڈ پریشر اور شوگر کے حوالے سے کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ جنید بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلامی بہنوں کے لیے روحانی علاج کے کیا کیا ذرائع ہیں، کیا کون کون سی سروس ہے ہمارے پاس روحانی علاج بھی؟ کوئی جنید بھائی ارشاد فرما دیں، دیکھیے پلیٹوں کے ذریعے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ رپورٹیں چینج ہو گئیں بالکل نا۔ اب یہ کہ کوئی ان کو روحانی علاج بھی بتا دیا جائے، تو اس سے پھر یہ کہ اس کو روحانی علاج کو بھی جوائن کریں گے، وظیفہ بھی پڑھتے رہیں گے، اور پلیٹوں کا علاج بھی چلتا رہے گا۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ عزوجل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت القاتم العالیہ کی یہ تعویذات کی ماشاء اللہ برکتیں ہیں کہ لوگ مستفیض ہو رہے ہیں۔ اچھا یہاں دیکھیں، میں عرض کر دوں ناظرین کو، شفا اللہ کے حکم سے ملتی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ یہ تعویذات आप डॉक्टर के पास जाते हैं है ना, तो दवाइयों में शिफा थोड़ी है, शिफा तो अल्लाह के हुक्म में है। अल्लाह का हुक्म होगा तो फिर वो दवाई शिफा का जरिया बनेगी, वरना आपने देखा होगा ना कि कोई दवा किसी को शिफा मिल जाती है तो किसी के लिए वही दवा ये मौत का पैगाम लेकर आ जाती है ना। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम फरमाए। नाज़रीन, ये तासुरात कुछ आपने देखे, लोगों के जज्बात माशाल्लाह आपने सुने कि अल्हम्दुलिल्लाह तो ये मदनी बहारें, ये वाक़ियात ये देख कर माशाल्लाह सुनकर एक एतिकाद भी मजबूत होता है, यकीन भी माशाल्लाह कामिल होता है, और लोगों का माशाल्लाह जहन भी बनता है कि कैंसर के मरीज़ ठीक हो रहे हैं और ख़ारिज का मर्ज था माशाल्लाह वो ठीक हो गया, इसी तरह बहुत सारे जिस्मानी अमराज माशाल्लाह वो दूर हो गए। तो रूहानी इलाज की बरकतें हैं, तावीदात की बरकतें हैं, और अल्लाह के कलाम में, अल्लाह पाक के सिफाती नामों में, अस्माउल हुस्ना में ऐसी ऐसी तासीरात होती हैं नाज़रीन कि यहाँ आपने वो वजीफ़ा पढ़ा, अल्लाह पाक का सिफाती नाम पढ़ा और अस्माउल हुस्ना आपने पढ़े या इसमें आज़म आपने पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्जल आपका मसला हल हो जाता है अल्लाह की रहमत से। तो रूहानी इलाज भी करना चाहिए। हमारे एक इस्लामी भाई थे, तासीरात में इन्होंने कहा था कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए और शुगर का मामला हो तो क्या वजीफ़ा पढ़ें। तो देखिए, शुगर के मरीज़ को चाहिए कि सूरह बनी इसराइल की ये आयत मुबारक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिदकिन व अखरिजनी मुखरज सिदकिन व अजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, यह आयत मुबारक सुबह शाम तीन तीन मरतबा ये पढ़ कर पानी पर दम करके ये पीना है, तीन तीन मरतबा ये पढ़ कर पिए, अल्हम्दुलिल्लाह से वजल शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, परहेज़ भी करना है, एहतियात भी करनी है, खाने पीने में भी थोड़ा एतिदाल के साथ चलना है और परहेज़ भी करना है, ये सारी चीज़ें साथ लेकर चलें और ये वजीफ़ा भी आप अपने मामूलात में शामिल करें, अल्हम्दुलिल्लाह से वजल शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, आप वजीफ़ा भी पढ़ लें और परहेज़ कोई हो नहीं रहा, कैसे फ़वाद फिर हासिल होंगे। तो दोनों चीज़ें साथ लेकर ये चलिएगा। अच्छा, इसके अलावा दूसरा ये भी आपने मालूम किया था कि ब्लड प्रेशर के लिए क्या करें, हाई अगर हो जाता हो तो आप फ़ौरन वुज़ू बना लें, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वुज़ू बनाने के बाद जब आप चेक करेंगे ना तो नॉर्मल होगा, अल्लाह की रहमत से इफ़ाक़ा हासिल होगा। अच्छा, वजीफ़ा भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ, 115 मरतबा या मुमिनु पढ़कर पानी पर दम करके आप पिया करें, हाई है तो नॉर्मल हो जाएगा, लो हो चुका है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नॉर्मल हो जाएगा। ये चाहें तो पहले से पढ़कर आप पानी पर दम करके रख लें, जब जब इस तरह की कैफियत हो तो उस वक्त भी आप ये पी सकते हैं। आइए नाज़रीन, शामिल करते हैं इस्तिखारों के जवाबात। हमारे कुछ इस्लामी भाई थे जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स की थी, उनके जवाबात में अर्ज़ कर देता हूँ। हमारे एक इस्लामी भाई थे, आपने कहा था, हफीज़ नाम बताया था, वालदा का नाम सकीना, के कपड़े का काम करना चाह रहे हैं, बेहतर है या नहीं। देखिए, इस्तिखारा किया गया है, माशाल्लाह बेहतर का इशारा आ रहा है। ये एक और इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि घर में बेबरकती है, लड़ाई झगड़े बहुत हैं, तो इसके लिए घर में कुरान पाक की तिलावत भी कीजिए, घर मोहब्बतों का गहवारा बन जाए। इसके लिए जब भी आप घर में दाखिल हों तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पहले सीधा कदम घर के दरवाजे में दाखिल करें, फिर घर वालों को सलाम करें, और अगर घर में कोई ना हो तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहें, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज करें और एक बार सूरतुल इखलास पढ़ लें। वजीफा एक ही, इसके फवाइद दो हासिल होंगे कि घर के लड़ाई झगड़े भी दूर हो जाएंगे, घर में बरकत भी रहेगी। हमारे आदिल भाई थे, आपने कहा था कि आधे सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है तो इस्तिखारा भी कीजिए। इस्तिखारा किया गया, बीमारी का इशारा है, कोई ऐसा रूहानी मसला फिलवक्त नहीं है। जब भी आधे सर में दर्द हो तो 7 मरतबा सूरतुल नास पढ़कर सर पे दम करें, चाहे आधे सर का दर्द हो या पूरे सर का दर्द हो, खत्म हो जाएगा। ये एक और इस्लामी भाई थे, आपने भतीजे के हवाले से कहा था, जुल्फिकार नाम है, काफी इनका इलाज करवाया लेकिन फर्क नहीं पड़ पा रहा। तो देखिए, इनका इस्तिखारा किया गया है, नजर बद का इशारा आ रहा है। इसके बाद ये एक और इस्लामी भाई थे, गुलाम मुस्तफ़ा नाम, आपने बताया था कि घर में बरकत नहीं है तो सूरतुल वाकिया की आप तिलावत किया करें रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से घर में बरकतें भी रहेंगी और तंगदस्तियाँ भी दूर हो जाएंगी। ये तो वज़ाइफ़ भी आपको बताए गए। अब जो नाज़रीन आपके जो अब जैसे मसाइल हैं, रुकावटें हैं, रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, कारोबार नहीं लग पा रहा, तो इसके तावीदात तरिया भी ज़रूर हासिल कीजिएगा और रूहानी इलाज के वस्तों से अपने इन मसाइल की, इन बीमारियों की काट का अमल भी करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तावीदात की बड़ी बरकतें, जो लोग राबता करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़वाइद हासिल करते हैं। कैसे फ़वाइद हासिल होते हैं, आइए, एक बड़ी बेहतरीन मदनी बहारें होता है। बाद अवत लोगों को इल्कुन निसा की तकलीफ होती है ना, इल्कुन निसा एक हिस्से में बाद अवत ये दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसम का जो निचला हिस्सा होता है एक हिस्से में ये काफ़ी दर्द होता है, बड़ी आजमाइश कुन ये कैफियत हो जाती है। एक मरीज को कैसे शिफा मिली, आइए वो वाकई आपको दिखाते हैं, मदनी बहार देखते हैं।
हमारे साथ एक ऐसे इस्लामी भाई मौजूद हैं जिनकी वाइफ के साथ एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि एक
इरकुन निसा का जो दर्द होता है ना, ये बड़ा तकलीफ वाला होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है इसके अंदर, और इसका इलाज ना हो तो बंदा बहुत परेशान हो जाता है, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ल तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से इनको फ़ायदा हासिल हुआ। किस तरह फ़ायदा हासिल हुआ आइए पूछते हैं इनसे। क्या नाम है आपका?
मोहम्मद इसहाक।
इसहाक भाई, क्या प्रॉब्लम थी वाइफ को और किस तरह फ़ायदा हुआ?
ये मेरी वाइफ के तकरीबन 2 साल हो गए थे, तो उसकी टांग में बहुत दर्द था, अरकुन हर कुछ इलाज कराया मैंने, कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ। तो मैं यहाँ से जा रहा, तो मैंने बोला यहाँ से तावीज़ करा लूँ। तावीज़ में तकरीबन मैंने पानी 11 दिन का जो पानी था वो भी पिलाया उसको। फिर इब्राहिम भाई को मैंने बोला कि प्लेटें लिख के दो, 10 दिन में मैंने प्लेटें लिख, उसमें माशाल्लाह बहुत फर्क हो गया।
अल्लाह की रहमत से 10 दिन के अंदर सेहत याब हो गए। बातों का अरसा लग जाता है, कई वक्त ये गुजर जाता है। चले, इरकुन निसा के तावीदात भी माशाल्लाह ये दिए जाते हैं रूहानी इलाज के बस्तों पर, तावीदात भी ज़रूर हासिल कीजिएगा। और एक वजीफ़ा भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ इरकुन निसा के दर्द से महफूज रहने का, और ये वजीफ़ा मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने अता फरमाया है कि अगर किसी को इरकुन निसा की तकलीफ़ हो, दर्द हो, तो उसे क्या वजीफ़ा पढ़ना है। तो देखें, अगर किसी को इरकुन निसा का दर्द हो तो रोज़ाना दर्द के मकाम पर, जिस्म के जिस हिस्से में दर्द है, जैसे निचले हिस्से में दर्द होता है, तो दर्द के मकाम पर हाथ रखकर अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ, पहले इस वजीफे के अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे और एक मरतबा सूरह फातिहा और फिर 7 मरतबा ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्नी सूअ मा अजीदु। सही, एक मरतबा सूरह फातिहा और 7 मरतबा आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्नी सूअ मा अजीदु, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्नी सूअ मा अजीदु, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्नी सूअ मा अजीदु। ये 7 मरतबा आप ये पढ़ना है इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह की रहमत से ये इरकुन निसाक की जो तकलीफ़ है, दर्द है, ये ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। अच्छा, अब इसमें देखिए थोड़ी समझने की बात ये है, थोड़ी एहतियात इसमें ये करनी है कि ये जो दुआ मैंने आपको बताई, वजीफ़ा आपको बताया, ये तो आप जो मरीज़ जिसके दर्द है ना, जब वो खुद पढ़ रहा हो तो अब इस अंदाज से पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्नी सूअ मा अजीदु। अब मरीज़ नहीं पढ़ रहा, कोई दूसरा पढ़कर दम कर रहा है, तो अब अगर तो मर्द पर दम कर रहा है तो अन्नी की जगह अनहू पढ़ेंगे, अन्नी की जगह अनहू पढ़ेंगे। यानी अब मिसाल के तौर पर किसी घर के सरपरस्त हैं, वालिद साहब हैं, उनको इरकुन निसा की तकलीफ़ है और ये वजीफ़ा में पढ़कर दम कर रहा हूँ, तो पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे इस अंदाज से दुआ, अल्लाहुम्मा अज़हिब अनहू सूअ मा अजीदु। सही, और अगर औरत पर दम कर रहे हैं, अब जैसे वालदा के मिसाल के तौर पर बहन के हैं, तो अब अन्नी की जगह अनहा पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अज़हिब अनहा सूअ मा अजीदु। तो इसमें ये एहतियात कीजिएगा, इस एहतियात के साथ आप ये वजीफ़ा पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम शिफा हासिल। अब हो सकता है ये तो नाज़रीन हमारे कहें कि भाई ये तो थोड़ा मुश्किल है वजीफ़ा, अब इरकुन निसा में दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, अब थोड़ा पढ़ना, फिर जो इसमें ये एहतियात बताई गई कि अगर खुद पढ़ें तो इस तरह पढ़ना है, किसी दूसरे पर पढ़कर दम करें, मर्द हो तो अब ये इस अंदाज से दुआ पढ़नी है, और अगर औरत हो तो अब इस अंदाज से दुआ पढ़नी है, फिर पढ़कर दम करना है। तो अब हो सकता है ये मुश्किल लगे, तो चले एक आसान सा एक और वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ, अगर किसी को इरकुन निसा की तकलीफ़ हो, दर्द हो, तो 7 मरतबा या मुहयी या मुहयी या मुहयी, ये 7 टाइम 7 मरतबा पढ़कर आप दम कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल दर्द जाता रहेगा। नाज़रीन, सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम की जानिब है और मैसेजेस आपके काफ़ी सारे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी आपके मैसेजेस ये शामिल कर लूँ ताकि इनके भी रूहानी इलाज ये बता दिए जाएँ। अच्छा, इन्होंने ये एक मैसेज किया है, अस्सलामु अलैकुम जी, मेरा मसला हल कर दें, हमारे घर में और रिस्क में बरकत हो, हमारे घर के तमाम मसाइल हल हो जाए, कोई ऐसा वजीफ़ा बताए। हर चीज़, हर मसले का हल नमाज में, नमाज और तिलावत कुरान में, तिलावत कुरान की बरकत से घरों में अल्हम्दुलिल्लाह रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं, हम अपने घरों को तिलावत कुरान से आबाद करें, सूरह यासीन शरीफ की घर में तिलावत करें, इसी तरह आप एक हफ्ते का ये वजीफ़ा है, 7 दिन तक आप ये वजीफ़ा पढ़ें, 112 मरतबा पढ़ना है, या रज़्ज़ाकू या रहमानू या रहीमू या सलामू, इंशाअल्लाहुल करीम घर में बरकत भी रहेगी, घर के लड़ाई झगड़े बीमारियां तकलीफ़ें सब दूर हो जाएंगी, मसाइल भी हल हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अच्छा, इन्होंने कहा है कि शहज़ादी हैं, उम्मीद से हैं, मेरी बेटी पहले पैदा हुई थी वो इंतकाल कर गई थी और 2 महीने में, अब मेहरबानी करके कोई इस हवाले से वजीफ़ा बता दीजिए। तो सूरह मरियम ये पढ़कर पानी पे दम करके पिए, इसी तरह सूरह इंशिकाक की इब्तदाई 5 आयत पढ़कर पानी पे दम करके ये पीना है। अच्छा, इन्होंने कहा है कि दोनों ये इन्होंने कहा है कि शादी हुई है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इनके लिए कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बतें पैदा हो जाएं, अल्लाह पाक आपस में मोहब्बतें पैदा फरमाएं। और देखें 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी पे दम करके ये दोनों पिला दें, इन दोनों का इंशाअल्लाहुल करीम आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी इंशाअल्लाहुल करीम। अच्छा, मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है, तो इस हवाले से कोई वजीफ़ा बता दीजिए। सूरतुल लैल कुरान पाक के 30 पारे में 41 मरतबा पढ़कर सरसों के तेल पर या नारियल के तेल पर दम कर दें और सर के बालों में लगाएं, रात को सोने से पहले खूब अच्छी तरह लगाकर मालिश कीजिए और सुन्नत के मुताबिक सर में तेल लगाइएगा, इंशाअल्लाहुल करीम सर के बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अच्छा, ये एक और मैसेज है, नाम है मदिया, इन्होंने कहा है कि औलाद नहीं हो रही, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। तो हुसूल औलाद के लिए दुआ इब्राहिम दोनों मियाँ बीवी पढ़ें हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा, रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना ग़फ़िरनी व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। यह हर नमाज के बाद दोनों मियाँ बीवी ने 3-3 मरतबा पढ़ना है, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से साहिब औलाद हो जाएंगे। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे, या रहमान रहीम परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा, या अल्लाह पाक बेघरों को घर अता फरमा, या अल्लाह जिनके अपने घर नहीं उन्हें अपने ज़ाती घर अता फरमा, या रहमान रहीम जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने कॉल्स की, मैसेज की, अपनी बीमारियों का, परेशानियों का, तकलीफ़ों का बताया, या अल्लाह पाक तू ही मुसब्बिबुल असबाब है, या अल्लाह तू ही शिफा देने वाला है, या अल्लाह तू ही मुश्किलात से नजात देने वाला है, या अल्लाह सबकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, आजमाइशें, तकलीफ़ें, दुख दर्द, गम रज सब दूर फरमा दे, सब पर अपना रहमो करम फरमा, बे औलादों को नेक साले आफियत के साथ औलाद अता फरमा, जो मुसलमान कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुबतला हैं अल्लाह पाक उन्हें भी शिफा अता फरमा, सब पर अपना रहमो करम फरमा दे। माह रजबुल मुरजब का सदका, या अल्लाह हमारी तमाम जायज़ दुआएँ अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की, आमीन आमीन बिजाहिन नबीहिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी, हर कदम पर